नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम माइंड मैटर्स इसका ध्येय है कि जीवन को निर्विघ्न कैसे बनाया जाए, उसमें हमारे मन का क्या रोल है और मन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने तनाव के बारे में बात की। तनाव क्यों होता है, कैसे होता है, तनाव कितने प्रकार के होते हैं और कैसे तनाव हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, शरीर के विभिन्न अंगों पर कितना बुरा प्रभाव डालता है। तो यह तो हम जान गए कि तनाव एक बहुत ही बुरी चीज है और हम चाहते भी हैं कि तनाव को दूर हटाया जाए। तो इस तनाव के और कुछ ऐसे ही पहलुओं के बारे में हम आज बातचीत करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल से। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत आपसे जारी रखते हुए पूछना चाहेंगे कि तनाव जो है उसके बारे में कुछ लोग समझते हैं कि कोई पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ तनाव जो है वो हमारी लाइफ में जरूरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं समझता हूं कि एक प्रकार से मिसकंसेप्ट है। बल हेंसेल ने भी कहा है, जो आपने कहा कि यू स्ट्रेस कहते हुए, यू स्ट्रेस जरूरी है।
जी हाँ,
लेकिन मैं समझता हूं कि भाषा इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रेस ना कहे। अगर स्ट्रेस आप कहेंगे तो वो कब बढ़ जाएगा वो पता नहीं,
क्योंकि स्ट्रेस एक नेगेटिव
है अल्टीमेटली, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस बुरा प्रभाव करेगा। और दूसरा, लोग ये समझने लगते हैं कि चलो थोड़ा तो स्ट्रेस जरूर, चलो थोड़ा हो गया, परंतु उसका भी भाषा को बदली करना चाहिए। हम यह सोचे कि मोटिवेशन जरूरी है या कंसर्न जरूरी है। नहीं, जब आप मोटिवेटेड होते हैं, जो यू स्ट्रेस भी कहा वो एक मोटिवेशन की स्टेट है, उसमें आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि जो एग्जाम में जाने वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वे एक सप्ताह पहले, कहीं स्टूडेंट्स तो जब एग्जाम का मोटिवेशन होता है कि अभी एग्जाम आने वाली
पढ़
है,
रहे होते हैं,
कंसर्न है,
जी हाँ,
तो रात भर पढ़ते
हैं।
लेकिन दूसरे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको जब तनाव हो जाता है
स्ट्रेस
हो जाता है, पेट में दर्द होने लगेगा, लूज मोशन हो जाएंगे। एक सारी एंटिटी है जिसको कहा है एग्जामिनेशन फीवर, कि एग्जाम के दिनों में उन्हें बुखार आ जाता है। इसके कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
नहीं होता है इसका। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाए तो मोटिवेशन, कंसर्न और स्ट्रेस, इनके बीच में कहा जाए तो एक थिन लाइन है।
बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि अगर मोटिवेशन और कंसर्न है, और अत्यधिक मोटिवेशन और अत्यधिक कंसर्न अगर हो जाती है, तो कंसर्न शायद एक स्ट्रेस
का रूप ले सकता है।
तो मतलब एक व्यक्ति को या किसी भी दर्शक को हम यही कहेंगे कि अपना जो मोटिवेशन और कंसर्न तक रखिए, लेकिन उसको अपने स्ट्रेस के रूप में ना
लाइए। बल उसमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी है,
जी हाँ,
कि जब वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है तब स्टीरॉयड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं।
जी,
मोटिवेशन में स्टीरॉयड्स नहीं बढ़ते। बल इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई दर्शक कहेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि स्टीरॉयड्स बढ़े या नहीं,
ये एविडेंस है इसके बारे में, स्टडीज हुई है।
लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जब भी कोई परिस्थिति आप पर थोड़ा बुरा प्रभाव डाल रही है,
जी हाँ,
आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं,
जी हाँ,
आप थोड़े अपसेट होने लगे, परफॉर्मेंस आपका कम हो गया, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, तो समझ लो कि ये मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रेस है।
तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए स्ट्रेस जरूरी नहीं है, ये एक हार्ड स्टेटमेंट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए हमें जरूरी नहीं तनाव है, तनाव नहीं हो तो भी हम उस कार्य को और अच्छी रीति से कर सकते हैं,
और अच्छा कर सकते हैं,
क्योंकि
आप क्रिएटिवली सोच सकते,
क्रिएटिवली सोच। अच्छा, तनाव मतलब क्रिएटिवली जैसे आपने बताया सोच सकते हैं, तो तनाव यानी हमारी थिंकिंग को भी रोक देता होगा?
डेफिनेटली,
थिंकिंग पर भी प्रभाव जरूर डालता होगा।
एक तो थिंकिंग को डिस्टर्ब कर देता है, नहीं ज्यादा ही आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, आपको कंफ्यूज कर देगा,
कंफ्यूजन।
और आज वर्तमान एक नो हाईली कॉम्पिटिटिव एज है, इस हाईली कॉम्पिटेटिव एरा में क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग इज वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक, अगर कोई मैनेजर है, उसको उसी क्षण उसने अगर गलत निर्णय कर लिया तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है,
नुकसान हो सकता है।
तो इसके कारण सचमुच हमें स्ट्रेस फ्री होना चाहिए
जी।
और स्ट्रेस फ्री का मतलब ये नहीं कि भी आप लेजी हो गए, नहीं, वो अंदर प्रेरणा तो है आप में, नहीं, मोटिवेशन तो है, परंतु आप वो नेगेटिव फीलिंग्स को अंदर में अनुभव नहीं कर रहे हैं,
जी हाँ,
इसके कारण आपका परफॉर्मेंस उल्टा और भी अच्छा होगा,
अच्छा चल रहा है। और अब आपने ये बात बता दी तो मैं समझता हूँ दिमाग में हमारे और क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि मुझे भी आज तक ये मिसकंसेप्शन था कि स्ट्रेस और मोटिवेशन ये एक ही रूप में चलते हैं, तो स्ट्रेस जरूरी हमारे लाइफ में नहीं
है,
इनफैक्ट स्ट्रेस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम
कंप्लीटली।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि अक्सर मनुष्यों को तनाव होता है, इनफैक्ट हर व्यक्ति को किसी ना किसी रूप का तनाव रहता ही है।
बिल्कुल।
और हमारा ये मिसकंसेप्शन है, हम देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेमिनार्स चल रहे होते हैं या अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो तनाव होता है इसको डायग्नोस करने के लिए किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है या साइकोलॉजिस्ट से? तो आप खुद भी साइकोथेरेपिस्ट है और आप अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा बता सकते हैं हमें, तो आपका क्या कहना है इसके?
100% जरूरी नहीं है। और अगर आप जब अपने आप को ये पहचानने लगेंगे तब ही कुछ कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात, तो कोई एक्सपर्ट ये भी कहे कि नहीं नहीं आप इंडिविजुअली नहीं पहचान पाएंगे, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक तो काफी देरी हो गई,
देरी हो जाती है,
नहीं काफी हानि हो चुकी है। और ये आवश्यक भी नहीं। जो बेसिक बात हमने डिस्कस की कि आप यह समझ लीजिए कि थोड़ी भी मेरे मन पर कोई बुरी असर हो रही है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, नफरत की भावना आ रही है, कोई भी ऐसी फीलिंग हो रही है, तो भी आप स्ट्रेस में। बॉडी पर अगर कोई इफेक्ट आपको होने लगी है कि पसीना होने लगा, पल्पिटेशन बढ़ गया और कोई बात है, तो आप अपने आप रिकॉग्नाइज करिए कि आई एम अंडर स्ट्रेस और फिर स्टेप लीजिए। अगर उसका परिणाम होने लगा है और फिर आप जानना चाहते हैं कि भी कितना प्रभाव हुआ,
तब डॉक्टर की हेल्प आप
फिर ले सकते हैं कि भी सचमुच हार्ट पर असर हुई है, थायराइड की एक्टिविटी बढ़ गई, तब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट भी करानी पड़ेगी, तब ही आप पहचान।
लेकिन एक इसको अगर कहा जाए, एक शॉर्ट में कहा जाए, तो ये कह सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते
खुद बनिए,
क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तनाव तो हमारा ही क्रिएटेड होता है।
हाँ।
और अगर हमारा क्रिएटेड है तो उसको डायग्नोस कराने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाँ। तो मेरे को लगता है सबसे अच्छे डॉक्टर तो हम ही होंगे।
हाँ।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम अपने तनाव को और वो क्यों हो रहा है उसको हम जाने पहचाने और उसका निवारण करें, तो हमें नहीं लगता किसी डॉक्टर के पास जाने की, एटलीस्ट मानसिक तनाव के लिए किसी भी के पास जाने की जरूरत है ना।
स्ट्रेस इज सेल्फ क्रिएट। लोग आज इसको मानते नहीं है। जब मैं मेडिकल स्टडीज कर रहा था तब भी हमने एक छोटी सी रिसर्च की थी कि साइकेट्री के डिपार्टमेंट में आने वाले सभी पेशेंट्स को यह पूछा
जी
कि आपको ये जो कोई ना कोई मानसिक बीमारी है उसका कारण क्या है। तो आश्चर्यकारक बात थी कि 81% पेशेंट्स ने यह कहा कि हमारे स्ट्रेस के लिए और कोई जिम्मेवार है। जैसे एक वृद्ध महिला की जिसको डिप्रेशन था, उसको जब पूछा कि भी आपके डिप्रेशन का क्या कारण है, तो उसने तुरंत कहा कि मेरी बहू मेरे डिप्रेशन का कारण है। ऐसे एक जवान महिला को सरदर्द था, क्रॉनिक हेडेक था, तो उसको भी ये पूछा कि भी आपके सरदर्द का क्या कारण है, तो उसने एक सेकेंड की भी देरी नहीं की, कहा मेरी सास मेरे सरदर्द का कारण है। तो ऐसे हम औरों को जिम्मेवार समझते हैं और वो बिल्कुल गलत है। वास्तव में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रेस।
मतलब देखा जाए तो अक्सर हम अपने स्ट्रेस का जो ओना है, अपने स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सटर्नल सिचुएशंस को देते हैं। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरनल जो है उसका एनालिसिस, कोई परिस्थिति हो भी लेकिन अगर हमारी अपनी स्टेज या अपनी जो पावरफुल स्थिति है वो बहुत अच्छी रहे तो हम उसको समझ सकते हैं और उसको एनालाइज किस तरह करें, उसको उसके ऊपर थॉट्स अपने कैसे लाए, वो हमारे अपने कंट्रोल में।
वास्तव में तनाव वो आपके ही कारण, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रेस। उसमें एक बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, ये दो बातें हैं
जी।
थोड़ा सा ध्यान देके दो बातों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। पहला तो सत्य यह है कि जो भी आपको इमोशंस होते, जो भी फीलिंग्स होती, अच्छी या बुरी, सभी फीलिंग्स का बेसिस आपके विचार है। जब तक विचार नहीं होगा कोई भी फीलिंग्स नहीं
आ सकती।
नो, दैट सीड इज योर थॉट्स। और सेकेंड फैक्ट यह है कि जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना हमारे कंट्रोल में, मैं चाहूं तो हाथ को आधे घंटे तक ऊपर रखूं, बल थोड़ी तकलीफ होगी परंतु मैं ये कर सकता हूं। तो ऐसे ही विचारों को भी कंट्रोल करना आपके बस की बात है कुछ हद तक। कि कैसी भी बुरी परिस्थिति हो आप उसमें यह सोच सकते हैं कि भी सब कुछ अच्छा होगा, आई विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन। तो ऐसे अगर आप यह सोचे कि विचार भी आपके कंट्रोल में है, इन दोनों को अगर मिला दो तो यह निर्णय होगा कि फीलिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल।
मतलब पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा जो परफॉर्मेंस है, वो हमारे अपने हाथ में रहता है। हम चाहे तो लगाओ जिस तरफ भी हम चाहे
मोड़ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कई लोग समझते हैं कि तनाव जो है परिस्थिति के कारण ना होके उनके कार्य के कारण होता है। जैसे पूरे दिन वो लोग काम करते रहेंगे, कोई समझेंगे हम 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, इसलिए हम थक जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं ये चीज सही है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई लोग होते हैं जो कुछ काम ना करते हुए भी तनाव ले रहे होते हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन हमारे दर्शक लेकर चलते हैं, मैं समझता हूँ अक्सर लोगों में ये देखा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक प्रकाश डाला है कि लोग समझते हैं कि ज्यादा काम करने से मुझे स्ट्रेस हो गई। मेरे एक मित्र भी थे कि उनको कहीं प्रॉब्लम्स हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज भी हो गया, तो लोग कहने लगे कि अरे ये हार्ड वर्क करता है इसके कारण इसके प्रॉब्लम ये, परंतु वास्तव में ये नहीं था। उसके ऑफिस में भी लोग कहते थे कि भी इनकी एक एटीट्यूड ही नेगेटिव है, हर बात में ये व्यक्ति है वो नेगेटिव बात को लेता है, हर बात को प्रेशर समझ लेता है। तो वास्तव में हार्ड वर्क स्ट्रेस नहीं है, जो तनाव होता है वो कैसे आप उस वर्क को एंजॉय करते हैं या नहीं उस पर डिपेंड है। इसलिए कहा गया है कि हार्ड वर्क इज नॉट किलिंग, नो यू नीड टू डू थिंग्स इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ हार्ड वर्क बट द टीम वर्क विच इज इंपॉर्टेंट।
तो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क एंड टीम
इंपॉर्टेंट है। इफ यू एंजॉय, ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ, कई बार तो 10-10 घंटे के सेमिनार्स होते हैं
जी हाँ।
और दूसरे ही दिन और कहीं जाना है, फिर से सेमिनार कंडक्ट करना है, तो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व।
वैसे भी डॉक्टर साहब देखा जाए डॉक्टर्स की लाइफ वैसे तो सभी की, लेकिन काफी बिजी होती
होती है,
तो इस तरह हो तो हर डॉक्टर को ही तनाव हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति जो हार्ड वर्क कर रहा है उसे तनाव होना चाहिए। तो ये इटसेल्फ शो करता है कि ज्यादा काम करना नहीं लेकिन सोचना
उस पे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं,
एंजॉय करते हैं।
इसलिए अधिकतर तो मैं प्रोफेशन कहीं यूथ आकर के मुझे पूछते हैं कि हम कौन सी फील्ड चूज करें
जी,
तो मैं उनको यही राय देता हूँ कि ऐसी फील्ड चूज करो जो आप एंजॉय करेंगे, भले उसमें थोड़ी कम इनकम होनी है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इंजॉय करेंगे उस फील्ड को तो सदैव स्वस्थ रहेंगे, लेवल ऑफ हैप्पीनेस भी अच्छा होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अक्सर आपने देखा होगा कई मनुष्य आकर ऐसा बोलते हैं कि भाई स्ट्रेस को हटाया नहीं जा सकता, स्ट्रेस तो इनएविटेबल जिसे हम कहते हैं कि ये तो रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ पर है हमारे हर लाइफ की सिचुएशन में है हर जगह, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि 1000 मनुष्य ने तो 999 मरीज ये कहेंगे या लोग ये कहेंगे कि भाई तनाव तो है ही जिंदगी में और इसको आप नहीं हटा सकते।
मैं सोचता हूँ ये भी एक मिथ है, वास्तव में
आप इसे कहेंगे मिथ है,
कुछ हद तक मिथ है सच मुझे, बल थोड़ा सा तनाव रहेगा ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी भाषा बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम कहेंगे थोड़ा तनाव तो रहेगा ही, तो बहुत बढ़ जाएगा,
बहुत बढ़ जाएगा
है ना, वो का
सोच एकदम हमने नेगेटिव बना ली,
तो इसलिए नहीं सोचो, सोचो तो जितना मैक्सिमम हो मुझे कम करना, और कुछ हद तक तो हम सचमुच स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं अगर प्रॉपरली उन चीजों को जीवन में हम अपनाए, ऐसा एक दृष्टिकोण जीवन में अपना ले तो काफी हद तक हम स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब ये जो इनएविटेबल वर्ड है, इनएविटेबल मतलब उसे नहीं रोका जा सकता, तो क्या इसे रोका जा सकता है?
सचमुच रोका जा सकता है,
जैसे आपने बताया कि माइंड जो एनालिसिस पावर है, सिचुएशंस को किस तरह एनालाइज करता है, कोई रिएक्शंस हमारे किस तरह होते हैं, आपने पहले एक बार हमें बताया भी था कि सिचुएशंस तो लाइफलेस होती है, जैसे आपने बताया तो हमें अप्रोच हमारी उसकी तरफ कैसी होती है, तो उससे हम इसे शायद रोक भी सकते हैं।
बहुत बड़ी बात है कि अप्रोच आपका सही होना
सही है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा तनाव हो गया, और हमने भी देखा है कई बार हम एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि अच्छा तुम बहुत टेंशन में हो, भैया आप ऐसा करो कहीं घूमो, कहीं एंजॉय करके आओ, 10 दिन की छुट्टी लेके चले जाओ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा 10 दिन का एंजॉयमेंट तनाव को हमेशा के लिए हटा सकता है?
बिल्कुल नहीं, ये भी एक सुपरफिशियल तरीका है, है ना, ऊपर ऊपर से उसको आप थोड़ा समय के लिए चलो रिलैक्स हो गए, थोड़ा ठीक लगा,
इनफैक्ट
आप जब जॉब में आएंगे फिर से स्ट्रेस हो जाएगा।
तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो सिचुएशंस को आप एक पलायन कर रहे हैं उससे, आप भाग रहे हैं दूर से।
मैं भी आपने कहा था यही सोच रहा था, यू आर ट्राइंग टू एस्केप,
एस्केप एस्केप इज नॉट द वे,
और वर्तमान कॉम्पिटिटिव एज में तो यू हैव टू फेस द सिचुएशन,
फेस द सिचुएशन,
अगर आप उससे एस्केप करेंगे तो, और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है,
मतलब आपकी अप्रोच उसकी तरफ एक सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज देखी गई है कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं, काफी ज्यादा आपको टेंशन है, तो वर्कआउट कर लीजिए, कई लोग ट्रेनिंग्स के लिए चले जाते हैं, सेशंस के लिए चले जाते हैं, दे विल डू एक्सरसाइज, म्यूजिक चला लेते हैं, तो ऐसी प्रणालियों के बारे में, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में हमने कई सेमिनार्स में भी देखा है लोग इसको करते हैं कि 10 वेज ऑफ डीलिंग स्ट्रेस, उसमें एक्सरसाइज, चिल आउट, उसमें आप क्या कहेंगे?
इट कैन हेल्प, मतलब इसमें ये नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि छुट्टी लेना हो तो जरूरी नहीं है, कहूंगा तनाव हो तो भी डोंट टेक हॉलीडेज, आपको तनाव हो समझो आपने 10 मिनट म्यूजिक सुन लिया तो कुछ रिलीफ मिलेगी, दैट्स नॉट एन परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो भी एंडोर्फिन और एनकैफेलिन रिलीज
हो जाएंगे,
तो जिससे कुछ हक तक आपको रिलीफ,
पॉजिटिव सब्सटेंसेस,
हाँ, एक सपोर्ट के रूप में उसे आप यूज कर सकते हैं
जी हाँ।
परंतु हमें इसके साथ साथ भले ये भी करो, कोई हर्जा नहीं है, परंतु परमानेंट सॉल्यूशन का भी सोचिए,
मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है इसे देखा जाए। और कहा जाए तो ये एक हमारा डाइवर्जेंस है हमारी लाइफस्टाइल से। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस तरह हमने अपने थॉट्स को जबरदस्ती डाइवर्ट कर लिया, लेकिन अगेन वी कम बैक टू द सेम सिचुएशन, सेम लाइफ, रियल रियलिटी जो है हमारी, उसमें हमें जीना है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, कई बार ये देखा गया है कि हम अपने तनाव को कुछ सिचुएशंस को या कुछ व्यक्तियों को अट्रीब्यूट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट, जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि ये इसकी वजह से ही हुआ, या इस व्यक्ति की वजह से मुझे आज तनाव है, या इस परिस्थिति की वजह से, वरना मैं तनाव से ग्रस्त नहीं हूं। तो ऐसा क्यों है?
वास्तव में वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकते हैं कि परिस्थिति थोड़ी मुश्किल है, परंतु उसी को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक सिंपल सी बात लेते हैं कि हम तक कई बार ये पूछा भी जाता है कि क्या गरीबी स्ट्रेस नहीं है? गरीबी एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, परंतु इस परिस्थिति में भी अलग अलग लोग अलग रूप से रिएक्ट करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम है, मेरी आंखों से देखा हुआ यह एग्जाम्पल है। मुंबई में दो भाई थे, एक भाई बहुत पैसे वाला था और जो दूसरा भाई था वो गरीब था। जो पैसे वाला भाई था वो स्काई स्कैपर बिल्डिंग में रहता था और जो गरीब भाई था छोटी चौल में रहता था। इस गरीब भाई के तीन बेटे थे, तीनों के रिएक्शन डिफरेंट होते थे। जो बड़ा लड़का था वो तो गुस्सा करता था कि तुमने जन्म क्यों दिया, अगर सही से पालना नहीं कर सकते हो। उसकी एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी थी। जो सबसे छोटा था वो भी सोचता था मेरे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं है, और उस भी पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन जो बीच वाला था रात दिन पढ़ता था, जब और बच्चे खेलेंगे कहीं पिकनिक पे जाएंगे तो भी ये लड़का पढ़ता था, और आखिरी वह सर्जन बना, आज अमरीका में सेटल्ड है। उसने एक बार कहा भी कि मैं इतना क्यों पढ़ा, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे, अगर मेरे माँ बाप पैसे वाले होते तो शायद मैं नहीं पढ़ता।
नहीं इतना पढ़ता
नहीं, तो इसके कारण वो गरीबी स्ट्रेस नहीं। ऐसे और सिचुएशन में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं।
और भी डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो कई बड़े बड़े लोग जो आज की डेट में इतना आज के दिन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम उनके केवल सक्सेसफुल करियर की तरफ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई ये बहुत पैसे वाला है, लेकिन हम देखें अगर उनके लाइफ, रियल लाइफ में जाके उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है।
बट नो, यू कैन रियली कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेस कैन बी कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ मतलब सब थॉट्स का गेम है, केवल आप किसी परिस्थिति को कैसे एनालाइज करते हैं और उस पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब एक नया सब ग्रुप जो हम देखते हैं, एक नया जो नया इमर्जिंग ग्रुप है, वो देखते हैं कि बच्चे, यूथ और एडोलेसेंस जो ग्रुप है, तो इमोशंस का कंट्रोल आज के यूथ बिल्कुल खो चुके हैं। ये एक अलग प्रकार का तनाव लेते हैं, और ना केवल वो खुद लेते हैं लेकिन माता पिता के ऊपर भी उतना ही तनाव पड़ता है।
उसका कारण तो मैं ये समझता हूँ कि आज है ना हमारी कोपिंग स्किल्स बहुत कम हो गई है, या तो यूथ में कहे कि एक डील करने की एक फाइटिंग स्पिरिट जो होनी चाहिए वो फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई है।
जिसे आपने शायद अपने एक लेक्चर में बोला भी था कि जो कोशंट है, इमोशनल कोशंट लोगों का बहुत ही
अच्छा
कम
होना चाहिए
है।
नहीं, यहाँ तक मैं आज बंबई में एक सुइसाइड का केस था
जी।
वो लड़की को अपने बाल बहुत छोटे कटवाने थे, लेकिन फादर ने मना किया कि नहीं इतने छोटे नहीं करने, कुछ तो काटने के लिए हाँ कहा। फिर फादर बाहर गए तो उसने सुइसाइड कर लिया। दिस इज अपीयर्ड इन न्यूज पेपर एज वेल।
मतलब ये छोटी सी बात,
बात
है,
है हाँ।
लेकिन कूपिंग अप जो है हाँ। व्यक्ति बिल्कुल आज की डेट में
नहीं कर, सहन शक्ति कहे,
सहन शक्ति
भी बहुत ही कम हो गई है।
सहन करना कहें या सामना करने की, शायद समाने की भी बात अगर देखा जाए व्यक्ति नहीं कर पाता
है। तो दूसरा यूथ में ये हो गया कि उनको इंस्टेंट चीजें चाहिए, कि मैंने बोला आई कांट वेट, इसको कहते थिंग मस्ट गो माई वे। इस प्रकार की एक एटीट्यूड बन गई है यूथ की, उसके कारण भी डिप्रेशन बहुत ही बढ़ रहा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कई बार कई व्यक्ति जो हैं ये बोलते हैं कि भाई हमें तो तनाव होता ही नहीं, हमें लाइफ में कभी तनाव अनुभव नहीं हुआ, और कई परिस्थितियों को वो सकम भी कर जाते हैं, उनको फेस भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर बार बार रिपीटेडली ये बोलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मैं समझता हूँ कि ये भी गलत है कि थोड़ा बहुत तो तनाव सभी को होता है, कम से कम डिफिकल्ट सिचुएशन तो आते ही है,
आते ही है।
तो इसके कारण हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे सामने भी समस्याएं आती है और उसको मुझे डील करना है, मुझे अपने आप में कुछ नया सीखना होगा, स्किल्स को इम्प्रूव करनी होगी ताकि मैं उसको अच्छी तरह से डील कर सकूं। कुछ लोग ऐसे हो भी सकते जो कि मुझे तो अभी नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ जीवन में अचीव नहीं करेंगे। जैसे हमारी जानकी दादी कहती है, ठंडा ठाकुर है, कि बस ठंडा बैठा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, देन ही विल नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस, इवन इफ यू वॉन्ट टू बिकम नो मॉडरेटली इफेक्टिव इन योर लाइफ, सम सिचुएशंस आर बाउंड टू बी देयर।
डॉक्टर साहब, ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा रियलाइजेशन पावर की कमी है, कई बार हम महसूस नहीं करते,
बिल्कुल
तनाव आएगा, हमें नुकसान कर चला जाता है, पर यह हम थोड़ा अपना ढीठ, जैसे हम कहते हैं, एक एटीट्यूड हो जाता है कि हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि हमारे अंदर दर्द
है। ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं, उनको रियलाइजेशन पावर नहीं है,
रेजिस्टेंस बहुत है,
या तो वो व्यक्ति है ना हमेशा दूसरों को ही दोष देता रहता है। ऐसे भी मैंने लोग देखे, उनके सामने प्रॉब्लम्स तो बहुत है, वो खुद समझते हैं कि प्रॉब्लम है, परंतु उनकी भी मेरी कोई इसमें मेरा रोल नहीं है, मैं कारणभूत नहीं हूं, और कारणभूत है,
और कारण है,
और ऐसे करके अपने आप को और हार्मफुल देते हैं। ऐसे लोगों को बीमारियां भी बहुत हो सकती है,
काफी बीमारियां इनसे। तो डॉक्टर साहब, ये जो पर्टिकुलर सबसेट है, पर्सनैलिटी वाइज भी देखा जाए तो ऐसी पर्सनैलिटी, जैसे आपने बताया था टाइप है, क्या ऐसे लोगों को काफी हार्म हो सकता है?
बिल्कुल,
इन लोगों के लिए मैं समझता हूँ एक वार्निंग सिग्नल्स
भी है। ये टाइप ए से भी अलग है, टाइप ए तो एक पर्सनालिटी है, जो दूसरे ऐसे कि जो आपने कहा कि रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि भी मुझे स्ट्रेस है, और उनको रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए,
रियलाइजेशन पावर जो है बहुत ही
एक नहीं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि मेरे में भी ये स्ट्रेस है।
सब अब अक्सर देखा गया है कि जैसे ये सिचुएशंस हैं, वर्ल्डली सिचुएशंस आती है, तो हमारा कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
ये कारण हो सकता है कि जब ये स्ट्रेस काफी बढ़ जाए, काफी बढ़े, तब ये हो सकता है, अन्यथा शुरू में ही अगर आप जागृत हो जाए, नहीं, वो रियलाइज करे स्ट्रेस है और आप उसके लिए कोई कदम उठाने लगे, तो उस कंट्रोल को काफी हद तक आप मेंटेन कर सकेंगे। एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा होगा कि वह परिस्थिति आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वह समस्या क्रिएट करे।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों की कई भ्रांतियां जो तनाव से रिलेटेड हैं, उनसे संबंधित हैं, वो आपने दूर की, और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर गिरीश पटेल से कि तनाव का क्या कारण होता है, तनाव से संबंधित भ्रांतियां क्या हैं। अब ये तो हम जान गए कि तनाव के विभिन्न कारण क्या हैं, क्या उसके बारे में भ्रांतियां लेकर हम अपना जीवन अब तक जी रहे थे, और अब एक ही स्टेप, एक ही कदम हमारे सामने है कि तनाव का निवारण कैसे हो। तो अपने अगले एपिसोड में हम अपनी चर्चा डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ जारी रखेंगे और हमारा विषय होगा तनाव का निवारण। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।